नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, चीन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपना सकता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विज्ञान को विकसित भारत और मानव केंद्रित विकास के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। 2027 AFC एशियन कप फुटबॉल के फाइनल क्वालिफायर में आज शाम भारत का मुकाबला हांगकांग से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्ष में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत सीमाएं, आधुनिक सशस्त्र बल, स्वदेशी हथियार, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात और वैश्विक विश्वास से ये क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। सूचना तथा प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि भारत ने पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण विकास और सुशासन देखा है। पुदुचेरी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज चेन्नई में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री शेखावत ने कहा कि भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमृतकाल की ओर विकास की एक नई यात्रा शुरू की है।
Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, India has embarked on a new journey. That is a journey of development during this Amrit Kal of a developed India focusing on service, good governance and welfare of the poor people.
देश में पिछले एक दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम आत्मनिर्भरता के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के प्रयासों पर जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
पिछले एक दशक में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को स्पष्टता, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ परिभाषित किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक संदेश स्पष्ट है, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक सटीक समन्वित मिशन जिसमें देश के वीर जवानों ने सीमा पार 9 आतंकी शिविरों को बेअसर कर दिया, जो पहलगाम आतंकी हमले का एक तत्पर और निर्णायक जवाब साबित हुआ। स्वदेशी विनिर्माण ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। INS विक्रांत से लेकर लंबी ऊंचाई वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड तक भारत आत्मविश्वास के साथ डिजाइन और तैनाती कर रहा है। वहीं IDEX जैसी पहल स्टार्टअप और MSME भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रदान कर उन्हें और अधिक सशक्त बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014 से 34 गुना की वृद्धि है। 5,000 से अधिक वस्तुएं अब सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल है और मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा पूंजी अधिग्रहण का 75% बजट घरेलू उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। अग्रिम मोर्चे से लेकर कारखानों तक, युद्ध के मैदानों से लेकर बोर्ड रूम तक, भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जहां सुरक्षा ही ताकत है और आत्मनिर्भरता उसकी ढाल। विष्णु की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के के 11 साल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में खेलों के बुनियादी ढांचे का विस्तार देश को वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का एक लेख साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को केंद्र में रखकर देश में खेलों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। लेख में श्री मांडविया ने कहा है कि पिछले 11 वर्ष में भारत के खेल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का बजट 3 गुना से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना जैसी प्रमुख पहलों से देश का तकनीकी वस्त्र क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रयास घरेलू विनिर्माण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा रहे हैं और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए आतंक के खिलाफ दोहरे मापदंड नहीं अपना सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो सभी को चिंतित करती है। अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान एक फ्रांसीसी अखबार के साथ साक्षात्कार में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत का संघर्ष आतंकवाद के खिलाफ है, न कि किसी देश के खिलाफ। उन्होंने बताया कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति बनाए रखता है, जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देना जारी रखता है। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी भारत पर फिर से हमला करते हैं तो उन्हें जहां भी पाकिस्तान में संरक्षण दिया जाएगा वह मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।
The focus of our of Operation Sindoor was to hit Muridke and to hit Bhavalpur because these were the two most prominent open declared notorious centers of terrorism in Pakistan. And for decades from these two places people have set out this is where it was planned, this is where it was organized, this is where it was financed, this is where it was justified.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस कदम उठाता रहेगा। श्री राय ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। श्री राय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों और नीति निर्माताओं के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है जिसके अंतर्गत समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र और समाधानों का निर्माण करने के लिए लोगों को सशक्त बनाया जा रहा है। हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और ग्लोबल यंग अकादमी की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत और मानव केंद्रित विकास के दृष्टि के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
To realize the vision of Viksit Bharat 2047, our economic power must be complemented by our scientific thinking and our ability to adapt to emerging technologies. This is what will lead us to further where growth is inclusive, sustainable and human-centric. Science is not only about acquiring knowledge, it is equally about dismantling that knowledge and ensuring its benefits reach to the last mile.
केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल स्विट्जरलैंड के बर्न में वहां के उद्योगपतियों के साथ बैठकें की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठकों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग मजबूत करना और भारत तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच हाल ही में हुए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते TEPA के तहत नए रास्ते तलाशना है। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि भारत आज निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक गंतव्य स्थल बन गया है। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द लास्ट 11 इयर्स हैज टेकन द कंट्री फ्रॉम अ फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी टू अ टॉप 5 कंट्री। ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स that have been strengthened in the last 11 years. While you are all aware of the outstanding progress India has made, the Indian economy has made, the work that's happened to reduce extreme poverty.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया कि अब एक्सियम 4 मिशन भारतीय समय के अनुसार कल शाम 5:30 बजे केप कैनेवरल के कैनेडा स्पेस सेंटर में भेजा जाएगा।
अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स ड्रैगन कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39 से रवाना होगा। इस ऐतिहासिक मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला के अतिरिक्त अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहेंगे। शुभांशु शुक्ला ने वीडियो संदेश में कहा कि वे इस मिशन में शामिल होकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
नमस्ते, आई एम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronaut corps.
चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई बंगलुरु भगदड़ के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है। स्वतः संज्ञान याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने सुनवाई की। अब ये मामला गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने कल तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में लू चलने की संभावना है। राजस्थान के कई जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।
बीते 24 घंटे में श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर में 46 डिग्री से ऊपर, वहीं बाड़मेर, चूरू और कोटा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 2-3 दिन राज्य के कई जिलों में भीषण लू का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। साथ ही श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पारा 47 से 48 डिग्री दर्ज किए जाने की आशंका है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, भरपूर पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
जम्मू कश्मीर में भी लू की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
जम्मू क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार को क्षेत्र के 5 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक लू चलने का अनुमान लगाया है। मौसम में अत्यधिक बदलाव के कारण IMD और स्वास्थ्य अधिकारियों ने निवासियों, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं जैसे कमजोर समूह से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना।
हांगकांग में 2027 AFC एशियन कप फुटबॉल के फाइनल क्वालिफायर राउंड मैच में आज भारतीय टीम का सामना हांगकांग से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले 16 वर्ष पूर्व 2009 में भारत तथा हांगकांग ने दोस्ताना मैच खेला था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स स्थिर रहा, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 14 अंक बढ़कर 82,459 पर और निफ्टी 25 अंक बढ़कर 25,128 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, चीन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपना सकता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विज्ञान को विकसित भारत और मानव केंद्रित विकास के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और लोगों को सतर्क रहने को कहा। और 2027 AFC एशियन कप फुटबॉल के फाइनल क्वालिफायर में आज शाम भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।